Market Mantra. Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor, Sparsh Saxena.
धन्यवाद अनुभा. नमस्कार. घड़ी का इशारा हो चुका है शाम 6:30 का और हम आप सभी श्रोताओं का आपके फेवरेट शो मार्केट मंत्र में स्वागत करते हैं. आज के संक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और साथ ही चर्चा भी करेंगे. चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर एसपी शर्मा. डॉक्टर शर्मा, मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
जी शुक्रिया. थैंक यू.
और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं अनुभा रोहतगी.
थैंक यू स्पर्श. Domestic markets remain closed on account of Guru Nanak Jayanti. Global markets in US and Asia register decline. India's GDP likely to grow between 6.5 to 7% in the next three fiscals, predicts international rating agency S&P Global. And Union Minister of Power Shri Manohar Lal inaugurates first trilateral power transaction from Nepal to Bangladesh through the Indian grid.
गुरु नानक जयंती के अवसर पर घरेलू बाजार बंद रहे. अमेरिका और एशियाई बाजारों में गिरावट देखी गई. अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल का कहना कि अगले तीन वित्त वर्षों में भारत की GDP 6.5% से 7% के बीच बढ़ने की संभावना है. और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने भारतीय ग्रिड के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश तक पहला त्रिपक्षीय बिजली पहुंचाने की परियोजना का उद्घाटन किया. घरेलू शेयर बाजार आज गुरु नानक जयंती के अवसर पर बंद रहे. कल लगातार छठे सत्र में बाजार गिरावट के साथ बंद हुए थे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 110 अंक की गिरावट के साथ 77,580 पर बंद हुआ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक की मामूली गिरावट के साथ 23,532 पर रहा. वहीं बात करें BSE के मिड कैप और स्मॉल कैप की तो दोनों ही सूचकांकों में बढ़त का रुख देखा गया. मिड कैप 0.4% बढ़ा और स्मॉल कैप में 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई.
डॉक्टर शर्मा, एज स्पर्श जस्ट यू नो रेड आउट यस्टरडे अगेन वी सॉ द मार्केट्स यू नो दे क्लोज्ड विद द डिक्लाइन. सो सिंस सितंबर, लेट सितंबर व्हेन द मार्केट्स टच देयर रिकॉर्ड हाईज, वी हैव बीन सीइंग अ स्टेडी डिक्लाइन इन द मार्केट्स. देयर हैव बीन मेनी रीजंस, वी हैव बीन डिस्कसिंग देम इन द प्रोग्राम एज वेल. But one of the reasons for the outflow, I mean, one of the reasons is the outflow of FPIs. And the reason behind that is being said is because of the underwhelming Q2 results. Now, given the way the markets have been falling, and which is being now called a correction territory, which is now entered the correction territory, how long do you expect this volatility, this correction to continue?
Yes, Anubha, this correction was expected since long because markets were at all-time high for many months starting from April, May, June, July, August. And we observed that markets are providing a great trajectory of growth to the investors. But there were many reasons actually at the global level, like the geopolitical developments and the uncertainty in the policy environment, in the interest rates and the some geopolitical headwinds spreading in the South Asia also. So all these developments were impacting the growth trajectory of markets, futuristic growth trajectory of markets, and markets were resilient. Markets were not getting any correction. So now when the markets were at all-time high and the US elections also happened and Trump is going to become the next president of US. So the policy environment also changes with the change in the leadership, actually.
Yes.
So now the world over, markets are fluctuating, volatile, and some confused also that what will be the scenario going forward after the taking over charge.
Yes, President-elect.
That is a major reason. And second is the deepening of the geopolitics in many countries. That is also again. And third reason, you rightly mentioned some slowdown in the earning of the corporate. That is also. So all these factors are strengthening the bears to grip the market in the corrective zone. But this is short-lived, I believe, because our economy, our many parameters like the IIP numbers, exports grew in high double digits yesterday. Yes. So all these parameters are very much in the favor of our market, and markets will rejuvenate once again, and markets will again touch the high that we already achieved in the recent months.
जी, डॉक्टर शर्मा, अभी जैसे अनुभा ने भी बात किया कि 6 दिन से मार्केट लगातार गिर रहे हैं, और मार्केट के कल गिरने का जो एक कारण देखा गया उसमें एक सेक्टर ने बड़ा साथ निभाया है, जिसको हम FMCG कह रहे हैं. और FMCG लगभग अगर हम टॉप से भी देखें, अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स देखें, तो तकरीबन 16% नीचे है. तो क्या ये ठीक समय रहेगा कि अगर जिसको इस सेक्टर में एंट्री करनी हो, क्या वो एंट्री बना सकते हैं इस सेक्टर में?
देखिए, नॉट ओनली FMCG, मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं, ब्लू चिप शेयर्स भी हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी करेक्शन हुई है. तो मैं ये समझता हूँ कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी है. काफ़ी लोग जो बात कर रहे थे कि उन्होंने मार्केट सिनेरियो को मिस कर दिया, तो हमने बात की थी कि ऐसे चांसेस जाते हैं. मार्केट्स आर नॉट स्टैटिक, मार्केट्स आर ऑलवेज डायनामिक. मार्केट्स कभी एक स्तर पे रुकती नहीं है. मार्केट्स को या ऊपर जाना है या नीचे जाना है. तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बन जाती है. लेकिन स्टेप्स में मैं एडवाइस करूंगा कि जो भी इन्वेस्टर इसमें एंटर करना चाहें, स्टेप्स में जाएं, क्योंकि मार्केट्स अनदर करेक्शन कांट बी रूल्ड आउट. और करेक्शन भी हो सकती है, क्योंकि अभी जियो पॉलिटिक्स सेटल नहीं हुई है. अभी जो US में पॉलिसी एनवायरनमेंट आगे क्या होगा उसके ऊपर अभी कुछ भी तय नहीं है. और तीसरा, जो हमारी कॉरपोरेट अर्निंग्स हैं, उनका भी इम्पैक्ट और थोड़ा बहुत हो सकता है. लेकिन ये जरूर है कि हमारी मार्केट बहुत स्ट्रांग है, हमारी मार्केट रेजिलिएंट है. आने वाले टाइम में इसमें ये नहीं है कि गिरावट ही गिरावट रहेगी. मार्केट्स विल रिजुविनेट सिग्निफिकेंटली एंड अचीव द टारगेट लेवल ऑफ ऑल टाइम हाई आने वाले टाइम में. मार्केट्स में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है. लेकिन अभी जैसे आपने बताया कि क्या FMCG में अभी एंटर कर देना चाहिए, तो उसमें एक बार मैंने यहीं पे एक स्ट्रेटजी डिस्कस की थी इन्वेस्टर्स के लिए, खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, कि जब भी मार्केट में एंटर करना हो तो स्टेप्स में करिए. कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक ही बार में मार्केट्स में मत डालिए. अगर आपको 100 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं, तो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट 40.
अच्छा,
बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रिटेल इन्वेस्टर्स हियर, डॉक्टर शर्मा, यू नो व्हाट डू यू थिंक, डू यू थिंक दैट द सिचुएशन इन द मार्केट इज लाइकली टू स्पूक स्पेशली द न्यू इन्वेस्टर्स हु मे नॉट हैव सीन सच वॉलिटिलिटी, यू नो, बिकॉज लाइक वी डिस्कस द मार्केट्स हैव बीन एट ऑल टाइम हाईज, दे बीन परफॉर्मिंग यू नो वेरी वेल, एंड सो अ लॉट ऑफ न्यू पीपल, न्यू इन्वेस्टर्स एंटर द मार्केट थिंकिंग यू नो वी आर गोइंग टू अर्न सो मच और वी आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स. बट ऑब्वियसली given the way the markets have behaved in the last few days, in the last few weeks, likely to spook new investors? What would you say? And what would be your advice to them?
Yes, we can't rule out some impact. But SIP or some investments in steps are always good. And this is not happening only in the stock market. This is happening other commodity classes also, like the gold. Gold decelerated from 79 to 74, 75. And somebody told me that they invested at 79 hugely,
okay,
that gold will go up to the level of 85 or 90. But the suggestion is that don't invest in a single, because the whole scenario is volatile. Whole world scenario is volatile. Markets are volatile. Policy environment is again volatile because of the so many geopolitical developments and the political developments. So one should not be that much confident that this is the right time or this is the wrong time. So invest in steps and sell in invest and buy in steps. That is the suggestion at this juncture, that always capture the market momentum. If the markets are decelerating, then start your investment in steps. If the markets are going up, then you start booking profits in that too in steps.
And like you yourself said, because the market's at a low right now, so I think this is also a good time to, you know, move into the market and buy the blue chip companies.
Yes, this is the good time for churning. You can shift your share portfolio also from some shares which are not providing adequate results. Then you can shift to the others also. That is a great market opportunity at this juncture.
कई बार ये कहा जाता है कि जब स्टॉक्स नीचे दामों पर मिल रहे हों तब ज़रूर उठाने चाहिए, जैसा आपने भी अभी कहा. लेकिन जब मार्केट नीचे होता है, हर बार कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है जब आम निवेशक घबरा जाता है कि शायद इसके बाद और कुछ खाई बाकी है नीचे गिरने के लिए, तो वह एंटर नहीं कर पाता. और एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसा आपने कहा स्टेप्स में इन्वेस्ट करना है, तो आम निवेशक क्या अब साथ साथ टेक्निकल्स भी देखना शुरू करे, जिससे कि वो ये पता लगा पाए कि ये पॉइंट या ये रेट जो है मेरे लिए अब खरीदने के लिए ठीक है?
देखिए, उसमें क्या है कि टेक्निकल्स या ये सब, क्योंकि सिनेरियो जैसे मैंने बताया कि बहुत वॉलेटाइल रहता है, अगर आपका टेक्निकल सिनेरियो आपको मार्केट में बाई की इंडिकेशन देता है और उधर से कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो जाती है ग्लोबली
जी,
और आप उसमें आप बाई मोड में हैं लेकिन ग्लोबली कुछ ऐसी बात हुई कि मार्केट डिसेलिरेट हो गई, तो ये सब फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स उस टाइम पे काम नहीं करते हैं व्हेन देयर इज सम ग्लोबल अनसर्टेनिटी और ग्लोबल वॉलेटिलिटी। तो उस केस में अपना जो इन्फॉर्म डिसीजंस, अपना कुछ आपको डिसीजंस लेना चाहिए,
आपका जो टारगेट है,
टारगेट है उसके अनुसार चलना चाहिए और उसे उसके लिए बेस्ट है जो आपका स्टेप्स में इन्वेस्टमेंट होता है, SIP जो आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज हैं वो बेस्ट रहती हैं कि कभी भी आप मार्केट का जो सिनेरियो है कभी डिसेलिरेट हो रहा है तो उस टाइम पे आप उसकी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं
जी। और एक सेक्टर और है पेंट स्टॉक्स, हालांकि हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस अभी नीचे हैं लेकिन स्टिल कुछ पेंट स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी नीचे मिल रहे हैं, लगभग हाई से अगर देखें तो तकरीबन 30% के आसपास वो नीचे हैं और लोगों का अब ये एक घबराहट है कि अगर जब ऑयल प्राइसेस नीचे हैं तो रॉ ऑब्वियसली उनका रॉ मटेरियल में प्राइस उनको फ़ायदा हो रहा है बट स्टिल प्राइसेस नीचे हैं, तो क्या कारण है उसके पीछे?
देखिए, अगर मार्केट मोमेंटम बहुत अच्छा हो, मार्केट्स बहुत अच्छे और प्राइसेस फिर भी गिर रहे हों स्टॉक्स, तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है
जी।
तो उस केस में डोंट कैच दी फॉलिंग नाइफ, मैं कहूंगा कि अगर मार्केट अच्छा मोमेंटम है और एक स्टॉक ऐसा गिर रहा है तो आप उसको उसमें मत जाइए, मेरा सजेशन है। लेकिन मार्केट्स ओवरऑल मार्केट डिक्लाइन कर रही है फिर स्टॉक्स गिर रहे हैं और आपके पसंदीदा आपका एक चॉइस होना चाहिए
जी।
ये नहीं है कि ये स्टॉक गिर रहा है इसको उठा लें, यू शुड हैव सम चॉइस, आपका एक चॉइस जरूर होना चाहिए कि मेरे को ये स्टॉक्स खरीदने, आपके पास लिस्ट होना चाहिए
जी।
ये नहीं कि जो मार्केट में आज गिर रहा है उसको उठाने का आप चेष्टा रखते हैं
जी।
तो देन यू विल लूज योर मनी।
और स्टॉक्स की जगह अगर हम बिजनेस देखें
जी,
कि बिजनेस एक काम कर रहा है, वो बिजनेस को अगर देख करके खरीदें तो वो ज्यादा बेहतर
जी। बिल्कुल, वो तो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस होने चाहिए, आपको कंसल्ट करना चाहिए अपने जो आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उसको कंसल्ट करके कि कैसे उस हिसाब से अपना इन्वेस्ट करना।
बिजनेस एडवाइजर के साथ साथ मार्केट मंत्र भी सुनते रहिए, वो भी बहुत जरूरी है
जी। आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर। एशियाई शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। जापान का निकेई 0.3% बढ़ा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर तिमाही में जापान की अर्थव्यवस्था में 0.9% की वृद्धि हुई, जो पिछले 3 महीनों में सबसे कम है। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.2% की बढ़ोतरी देखी गई। वहीं चीन का शंघाई कॉम्पोजिट 1.5% के नुकसान में रहा। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग का हैंगसेंग बिना किसी बदलाव के साथ बंद हुआ। वहीं यूरोपीय शेयर बाजारों पर नजर डालें तो अंतिम समाचार मिलने तक लंदन के फुटसी में 0.1% की गिरावट देखी गई। जर्मनी का डैक्स और फ्रांस का कैक बिना किसी बदलाव के साथ कारोबार कर रहे थे। डॉक्टर शर्मा, क्या कह रहा है एशियाई और यूरोपीय बाजार?
देखिए, क्या है कि यूरोप में अभी हमने देखा कि इन्फ्लेशन वापस अप हुआ है, 1.7 से 2% हो गया है। और चाइना में एक बहुत ही स्ट्रक्चरल मैं देखता हूँ एक स्लो डाउन में एंटर कर गया है चाइना। अगर हम IMF का डेटा देखें अगले 5 साल का 2029 तक का, तो जो एवरेज ग्रोथ रेट है चाइना का वो लगभग कोई 4.2-4.3 के आसपास बनता है। तो बहुत ही स्लो डाउन जो है दैट इज़ नॉट ओनली फॉर मंथ्स और क्वार्टर्स, द स्लो डाउन इज फॉर मैनी ईयर्स। एक नेगेटिव मोमेंटम बना हुआ है इकोनॉमी में, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि जो हाउसिंग प्राइसेस हैं वो डेसेलिरेट हो गए, 15 ईयर्स के लो पे चले गए
जी।
उसका एक कारण है कि जब इकोनॉमी 8%, 9%, 10% पे ग्रो करती थी तब ये सब प्लान्स हुए कि इन्वेंट्रीज क्रिएट हुई, हाउसिंग में बहुत बिल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद जब डिमांड डिसेलिरेट हुई, जब ये कोरोना के पहले से ही डिमांड डिसेलिरेट होनी शुरू हो गई थी, उसके बाद वो और डिपन हुई, उसके बाद अभी जो उनके बैलेंस शीट्स हैं जो बिल्डर्स हैं वो काफ़ी इम्पेक्टेड हैं। और दूसरा जो फिर वो पूरे नहीं कर पाए, अपार्टमेंट्स का जो अधूरा काम रह गया
जी।
फिर एक नेगेटिव सेंटिमेंट बन गया। अब इकॉनमी भी स्लो डाउन में है
जी।
एक तो होता है कि इकॉनमी बहुत मूवमेंट तभी तो डिमांड आएगी, योर GDP इज अ मेजर इंडिकेटर ऑफ योर डिमांड ट्रैजेक्टरी। अगर आपका GDP अच्छे से ग्रो कर रहा है तो हाउसिंग डिमांड भी होगी, उसमें कंजम्पशन डिमांड भी होगी, उसमें आपकी कंज्यूमर ड्यूरेबल डिमांड्स भी होगी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड भी होगी, सब जगह पे एक अच्छे मोमेंटम रहेगा। अगर जीडीपी स्लो डाउन में है तो देन ऑल योर सेक्टर्स आर इम्पैक्टेड। तो दैट्स वाई चाइना इज फेसिंग सीवियर स्लो डाउन इन दी हाउसिंग मार्केट, विच इज नॉट ओनली फॉर, उन्होंने पैकेज भी दिया, स्टिमुलेट भी कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट भी लो किया, बट ऑल दीज थिंग्स आर नॉट वर्किंग बिकॉज द ओवरऑल इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी इज डिसेलेरेटिंग फ्रॉम इट्स high level of 9-10%. Now the China is at around somewhere between 4-5%.
So then what does a slowing Chinese economy bode for the global economy?
Because China is a second largest economy.
Yes.
And that's why that also matter, that global growth is also impacted when China slows, because there are so many correlations between the GDPs. Yes. If some country decelerates, then the another associated country, those who are associated with that country in give and take in the trade and in investment, then those countries also start decelerating in their GDP numbers. So, impact to hoga, aas paas ke countries ke upar bhi hoga. Lekin humne dekha ke hamara economy, we are totally resilient.
Yes.
From US, from the advanced economies, from China, from Asia. Koi kitna bhi gire, hamara growth momentum is okay. हमने देखा कि कोरोना के जस्ट बाद हम 9.7% पे ग्रो किए, देयर आफ्टर वी ग्रू एट 7%, लास्ट ईयर वी ग्रू एट 8.2%, नाउ मेनी प्रोजेक्शंस आर दैट वी विल ग्रो मोर देन 7% फॉर द करंट ईयर आल्सो, सो आवर ग्रोथ रेट ऑन एन एवरेज इज मोर देन 8% इन द पोस्ट कोविड ईयर्स, दैट इज द ग्रेट रेजिलियंस विच इज शोन बाय अवर ग्रोथ पैरामीटर्स, अवर पॉलिसी एनवायरमेंट, अवर सपोर्ट टू द MSMEs एंड अवर सपोर्ट टू द every sector of the economy and all the citizens.
So we do have a story related to India's GDP, but before I come to that, let me just tell you how the US markets behaved. US markets ended lower yesterday after Federal Reserve Chair Jerome Powell dampened investors' hopes for another interest rate cut this year by saying that the US Central Bank need not rush to ease monetary policy. The Dow Jones Industrial Average fell 207 points or 0.5% to 43,751. The S&P 500 lost 36 points or 0.6% to settle at 5,950. And the NASDAQ Composite dropped 123 points or 0.6% to close at 19,108. Mr. Powell said that at a Dallas Fed event, he said that with the economy still growing, the job market solid and inflation still above the 2% target, the Fed can deliberate carefully on rate cuts. Dr. Sharma, what do you make out of President Jerome Powell's, you know, what he said yesterday? Because we've already seen that the rate cut cycle in US has begun. They started with a 50 basis point cut. Then this last month, they cut 25 basis points. But now Jerome Powell is saying, we need to deliberate, we need to take a step back and, you know, see how things happen.
I think they are right because inflation trajectory is not fully settled. But wo kehte hai na ke dil mange more.
Ji.
Ke they have cut the 50 basis point in the Fed rate, which is very good for the global economy and for the US economy. But now they have to see the inflation trajectory to be settled at around their target level. Inflation is now increasing from 2.4 to 2.6%. I think this should not happen. Markets were at all-time high. Gold was also at all-time high with the high interest rates at 5% or 5.5%. But now, when they have cut the 50 basis point, now they said that they will now stop because inflation is going up. The market started decelerating.
Yes.
So I think this is momentarily. This is short-lived. Markets will again rejuvenate because only the interest rates are not deriving the whole economic scenarios. There are so many other factors which will happen in the coming times.
But since we are talking about central banks, I have to draw your attention to the RBI, our own Reserve Bank of India, with inflation print for October, you know, having crossed the 6% mark. How challenging is the situation become now for Governor Shaktikanta Das now? Because we were, a lot of experts were expecting the Indian rate cut cycle to begin probably by the end of this year or early next year. But do you think that's likely now? Very quick comment.
Yes, because this was not expected that inflation will once again rejuvenate to the higher level, more than 6%. That is shocking, actually. Because expectations was that inflation will be somewhere 4 to 4.5% for the next 2, 3, or 4 months, and the RBI will start cutting the interest rate. But we have to see the inflation trajectory to soften, and with the strengthening of supply chain or other measures by the government. And
I think by January, because already the third quarter has started, we will have the results, earnings results
now,
coming
now
in by January.
Now the hopes are on 2025. Actually.
Yes. Let's move on to the next story, the GDP story that I was talking about. Driven by infrastructure development and increased consumption, country's GDP is projected to grow between 6.5 to 7% annually in the next three fiscals up to 2027. The S&P Global Ratings has said this in its latest Global Bank Outlook report. The new report by the agency added that structural improvements and good economic prospects will support the resilience of India's financial institutions. It added that higher demand coupled with stronger bank capitalization should boost bank loan growth, and the RBI's regulatory clampdown will strengthen the financial system in the medium term. RBI Governor Shaktikanta Das has also said last month that the country's growth story remains intact as its fundamental drivers, consumption and investment demand, are gaining momentum. He had said that India is likely to see a real GDP growth at 7.2% for financial year 24-25. So actually the S&P ratings is repeating what we've been discussing, what you've been saying in the program.
Jo Bharat कहता आ रहा है और उस पर अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसीज हैं वो भी मोहर लगा रही हैं, कैसे देख रहे हैं इस बात को?
बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज मोहर लगा रही हैं और IMF भी ऐसी प्रोजेक्शंस दे रहा है कि आने वाले टाइम में, अगले 5 वर्षों में जो भारत का ग्रोथ रेट है वो 6.7% के आसपास ऑन एन एवरेज रहेगा
जी।
तो काफी अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं और हम तो इससे भी, वी आर अहेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस। हमारा तो अनुमान है कि हमारा GDP जो है 7.5% और 8% के बीच में अभी भी ग्रोथ लेके आएगा इस साल में भी। हम तो बहुत ज़्यादा बुलिश हैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, ऑन द बैक ऑफ वेरियस रिफॉर्म्स, ऑन द बैक ऑफ एक्सटर्नल डिमांड। नाउ एक्सपोर्ट्स ग्रोइंग एट 19% इज अ ग्रेट थिंग। डिस्पाइट द जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स वी वर एबल टू एक्सपोर्ट मच एंड 19% इज द ग्रोथ रेट एंड द IIP नंबर्स आर ऑल्सो इंटैक्ट। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। So all the growth parameters are supporting the growth at this juncture, and we are expecting even higher growth of 7.5 or somewhere between 7.5 to 8% for the current year.
जैसा आपने कहा कि आप भारत पे बुलिश हैं, तो हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं वो भी सोच रहे हैं कि भारत पे बुलिश हैं, तो वो सोच रहे हैं शेयर मार्केट के हिसाब से ही। तो करेक्शन है, लेकिन
करेक्शन है, देखिए शेयर मार्केट अगर हम भारत के ऊपर बुलिश हैं तो उसका अर्थ ये नहीं है कि हम ऐसी स्पेकुलेशन में जाएं। जब मार्केट्स में फ्लक्चुएशन हो तो उस टाइम पे अपने एक ठंडे दिमाग से इन्वेस्टमेंट जो है आराम से स्टेप्स में करना चाहिए।
और आपने खुद ही कहा कि सिर्फ मार्केट्स ही नहीं है जो इकोनॉमी को ड्राइव करती हैं, बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं।
अब नजर डालते हैं अपनी अगली खबर की ओर। भारतीय ग्रिड के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश के लिए पहला त्रिपक्षीय बिजली पहुंचाने की परियोजना का आज उद्घाटन किया गया। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने बांग्लादेश के ऊर्जा मंत्रालय के सलाहकार फौजुल कबीर खान और नेपाल के ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का के साथ वर्चुअल माध्यम से इस परियोजना का उद्घाटन किया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय ग्रिड के माध्यम से किया गया ये पहला त्रिपक्षीय विद्युत समझौता है। और मैं अनुभव से चाहूंगा कि आप एक बार इस खबर को और विस्तार से बता दें।
जरूर। द गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड इट्स डिसीजन टू फैसिलिटेट द फर्स्ट ट्राइलैटरल पावर ट्रांजैक्शन फ्रॉम नेपाल टू बांग्लादेश थ्रू द इंडियन ग्रिड विद एन एक्सपोर्ट ऑफ अप टू 40 मेगावाट्स ऑफ पावर ड्यूरिंग द विजिट ऑफ द फॉर्मर नेपाल प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दाहाल प्रचंडा टू इंडिया लास्ट ईयर। During the visit, both sides had expressed their commitment towards greater sub-regional cooperation, including in the energy sector, which would lead to increased interlinkages between the economies for mutual benefit of all stakeholders. Following this, a tripartite power sales agreement between NTPC Vidyut Vyapar Nigam, Nepal Electricity Authority and Bangladesh Power Development Board was signed on 3rd October this year in Kathmandu. The start of this power flow from Nepal to Bangladesh through India is expected to boost sub-regional connectivity in the power sector. Dr. Sharma, this particular transaction, the first trilateral power transaction, If we look at it from, you know, a regional cooperation point of view, how important, how significant is this?
Yes, this is, I think, a very significant step and a great thing which has happened in South Asia. Because we have signed free trade agreements SAFTA in many decades back. But the fruitful results are not there. Our trade trajectory is stagnated. Investments are not that much lucrative. So now with the signing of this trilateral agreement, I think the possibilities will come more significantly, more openly in the coming times. Like we have opportunities for in other scenarios also, other segments also. So going forward, I think the more and more focus on trade and investments within the SAFTA countries, particularly the such kind of agreements will create welfare in the region and enhance the trajectory of GDP and the investments. So that all the countries are cooperating with each other. Like there are opportunities for other countries also, opportunities with Bhutan, opportunities with Maldives, opportunities with Sri Lanka. There are so many opportunities within the SAFTA region to move forward and to enhance their trade and investment scenarios.
Let's now, we've been connected with our correspondent Shweta, Akashvani correspondent Shweta, who's in Nepal. Shweta, welcome to Market Mantra. Can you tell us a bit about this particular trilateral agreement, which has been, you know, between India, Pakistan, India, Bangladesh and Nepal? Briefly.
This actually tri-agreement that has been signed between India, Bangladesh and Nepal is literally a sub-regional energy cooperation that is going to strengthen green energy utilization in the region. You see, the amount is very less. It's only 40 megawatts. But it is a step ahead, a way ahead of a greater cooperation. And electricity is one way of good earning for Nepal after tourism and remittance. So I would say it is strengthening Nepal.
Right.
And because it is through Indian transmission line, it is the trust that Nepal has towards India that can be seen through this trilateral agreement, that India is supporting Nepal in their earnings from green energy and giving their own transmission line for their earnings.
Right.
So this is one way to go ahead in strengthening the friendship between India and Nepal.
Shweta, thank you so much for that information. That was Akashvani correspondent Shweta in Nepal. And now let's move on to commodities. Global crude oil prices fell today and were heading for a weekly loss on worries about waning Chinese demand and expectations of fewer U.S. Federal Reserve interest rate cuts. Brent crude oil futures dropped 42 cents or 0.5% to $72.14 a barrel. U.S. crude was down 32 cents or 0.5% at $68.38 per barrel. For the week, Brent is set to fall nearly 3%, while WTI is set to decline nearly 4%. China's oil refiners in October processed 4.6% less crude than a year earlier because of plant closures and reduced operating rates at smaller independent refiners. Data from the National Bureau of Statistics showed on Friday. And oil prices also fell this week as major forecasters indicated slowing global demand growth. Moving on, domestic bullion markets remained closed on account of public holiday today. Meanwhile, in the international markets, gold prices steadied near yesterday's two-month lows on Friday and were poised for their worst weekly performance in over 3 years as a rallying U.S. dollar and expectations of less aggressive interest rate cuts by the Federal Reserve pressured the precious metal. Gold ended flat at $2,566 per ounce. Prices have fallen more than 4% so far this week, touching their lowest since September 12th on Thursday. Silver prices fell 0.4% to $30.35 per ounce.
Short comment aapka gold par.
Because dollar is strengthening because of this announcement that they will pause cutting the Fed rate. So the dollar is now this year's high level. That is impacting because when the dollar becomes strong, then that impact the commodity prices.
To shrotaon, ab waqt hai aaj ki charcha ko yahin viram dene ka. Dr. Sharma, aapka market mantra mein shamil hone ke liye bahut bahut dhanyawad.
Shukriya, thank you.
And before we close, a reminder of the headlines. Domestic markets remain closed on account of Guru Nanak Jayanti. Global markets in US and Asia registered decline. India's GDP likely to grow between 6.5 to 7% in the next three fiscals, predicts international rating agency S&P Global. And Union Minister of Power Sri Manohar Lal inaugurates the first trilateral power transaction from Nepal to Bangladesh through the Indian grid. And that's it in this edition of Market Mantra. Do remember to join us tomorrow at the same time. Till then, from the entire team, good evening. Namaskar. Market Mantra.